नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। पाकिस्तान में दो वर्ष पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आपातकाल घोषित किए जाने के बावजूद 2 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे अभी तक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। इससे पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद विश्व में स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाडी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।